ओम शांति। 20 नवंबर 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। डायरेक्ट क्यों लगाए यहां पर? अब तक हम तन मन धन सब रोजाना देते रहे थे मंदिरों में जाकर मूर्तियों के आगे। अब जिनको हम कहते थे रोजाना तन मन धन सब तेरा, वो लेते नहीं थे। हम तो दे देते, पर तो वो लेवे तो सही ना। इसलिए हम कह देते थे, वो लेते नहीं थे, हमारे पास रह जाता था। और यदि हम समझते थे कि हम तन मन धन दे देवे तो फिर हम कहां जाए? हमने यहां पाठ बजाने, हम कहां जाए? उसके लिए भी कोई बताने वाला नहीं था, उसको लेने वाला कोई नहीं था और कोई बताने वाला नहीं था कि भी इस तन मन धन को दे देने के बाद आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। आप परमात्मा ने आके बताया, बच्चे ये तन ये मन और ये धन मुझे दे दो। अब सारे देने को तैयार है तो बाबा क्या कहते हैं? मैं क्या करूं? तुम्हारा ये बीमार तन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, गंदा मन क्या करो? मेरे को तो अपना शरीर नहीं है, मैं तुम्हारे शरीर लेकर क्या करूंगा? मेरे पास अपने पास धन नहीं है, मैं तुम्हारा धन लेकर क्या करूंगा? मैं तुम्हारा ये गंदा मन लेकर क्या करूंगा? और फिर तुम क्या करोगे, ये मैं ले लूंगा। इसलिए इसको रखो अपने पास। अब इस तन को जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं ऐसे यूज करो, तो ये बीमार तन क्या बन जाएगा? एवर हेल्दी बन जाएगा, एवर वेल्दी बन जाएगा। जब आप अपना धन क्या करेंगे, मेरे अनुसार खर्च करेंगे, तो तुम्हें सतयुग में अपार धन मिल जाएगी। और ये जो गंदा मन है, ये मेरी मत से विरुद्ध चलने के कारण गंदा हो गया है, अब इसको आप अपने पास रखो और मेरी डायरेक्शन पर सोचना शुरू करो, तो ये गंदा मन तुम्हारा क्या बन जाएगा? शुभ। समझ में आ गया? अब इसलिए बाबा ने कहा कि डायरेक्ट मुझे दो। अब तक तुम मेरे नाम पर देते जा रहे थे गुरुओं को, साधुओं को, सन्यासियों को, मूर्तियों को, कैलेंडर्स को, चित्रों को, रोज गा गा करके ये लो ये लो ये लो, यही नहीं। अब परमात्मा कहते मेरा है, अब ये तुम्हारा नहीं है तन मन धन, अब मेरा, तुम इसे यूज करो। अपना समझोगे तो इसमें ममत्व हो जाएगा, मोह जाएगा, अटैचमेंट जाएगा, और भगवान का है समझोगे तो, ईश्वर का है समझोगे तो ठीक है। बीमार है, मर रहा है, सड़ रहा है तो सड़ने दो, मेरा थोड़ा सड़ रहा है। तो तुम्हारा ममत्व खत्म हो जाएगा। धन में तुम्हारा ममत्व तो खत्म हो जाएगा, मेरा है ही नहीं, मैं तो प्रस्ती हूं, मैं तो निमित्त हूं, मैं तो संभालने वाला हूं, तो तुम्हारा उससे ममत्व तो खत्म हो जाएगा। तुम्हारा ममत्व तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारे विकार खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा मन सर्व आत्माओं के लिए क्या हो जाएगा, सुमन बन जाएगा, मन सुमन बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो है ही नहीं। फिर इस मन को क्यों ना अच्छे से अच्छा बनाओ, बनाना तो मुझे है, तन को स्वस्थ मुझे बनाना है, मन को स्वस्थ मुझे बनाना है, धन को श्रेष्ठ मुझे बनाना, बाबा बनाएगा
मुझे, बना
मुझे बनाना है, बाबा तो नहीं बनाएगा,
बाबा तो सिर्फ रास्ता बताए,
बता दिया चलो तुम्हारी मर्जी, नहीं चलो तुम्हारी मर्जी, डंडा भी नहीं मारता, रोजाना आकर बार बार कहते हैं बच्चे आज से सही, जो बीत गया उसको बिंदी लगा, आज से ही सुधरना शुरू कर दे, अब से सुधरना शुरू कर दे, जब मिलो बाबा से तब कहते हैं अब से सुधरना शुरू कर दे, जब जागो तभी सवेर, इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है, ये अजीब इंश्योरेंस है, ना तन गया ना मन गया ना धन गया, इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के लिए क्या देना पड़ेगा, लेता नहीं यूज करो, पर आप इंश्योरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे भी नहीं देने, तन भी नहीं देना, मन भी नहीं देना, धन भी नहीं देना, केवल बाबा की डायरेक्शन पर, श्रीमत पर इसको चलाना, इनको यूज करना है, जितना हम श्रीमत पर यूज करेंगे उतना श्रेष्ठ तन मन और धन, ये है इंश्योरेंस का खर्चा, खर्चा है बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा, कोई रिश्वत नहीं, कोई पास खातरी नहीं, सबको बराबर।
ठंडे वाली मुद्दे में भगवान जी ने बताया था, ज्ञान की डुबकी लगाएंगे तो तुम्हें स्वर्ग की परी
बना दूंगा, डुबकी लगाने वाला पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। प्रश्न, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है, कौन सी स्मृति दिलानी है, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है, वापस घर चलना है, अनेक बार ये पार्ट बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे, शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे, यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा, रूहानी सोशल वर्कर की सेवा, तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो, यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो, बाप और घर को याद करो, गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन आजा रे इस धरती पर, ओम शांति। जहां गीत की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके ये गीत गाते हैं, गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते थे, गाते हैं। ये जानते तो नहीं कि किसको बुलाते हैं। छोड़ बीदे आकाश सिंहासन, आ जा रे इस धरती पर। तो कमाल की बात है कि वो ये जानते नहीं कि हम बुलाते किसको, बुलाते किसको हैं, ये वो जानते ही नहीं। इस समय धर्म ग्लानी है, पहले है प्रार्थना, फिर वे रिस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुना। प्रार्थना करेंगे फिर कहेंगे हे भगवान आओ हमें फिर से गीता का ज्ञान सुना, और फिर उठा के व्यास की गीता सुनाना शुरू कर देते। सुना खुद रहे हैं, पढ़ खुद रहे हैं। जैसे हम स्कूल में जाते थे वहां भी प्रेयर करते, दया कर दान विद्या का हमें, फिर जाके टीचर के आगे बैठ जाते, वो अपना साइंस मैथ हिंदी पढ़ाना शुरू कर देता। मतलब कहना भगवान से, पढ़ना इंसान से। आओ फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनो, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वे फिर रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानी हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ, स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, रूप तो सब आत्माएं बदलती, रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, तुम आत्माएं असुल कौन हो, निराकारी हो, फिर यहां आकर साकारी बनती हो, साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो, तो अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े, मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके। वे तो है स्वर्ग का मालिक, वे तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, क्या समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके, श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब बिल्कुल अलग है, सब बिल्कुल अलग है। ये बाप बतलाते हैं श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, श्री कृष्ण को तो अपने क्या हैं, माता पिता हैं। उसने मां के गर्भ से अपना रूप रचा, मां के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मैं तो नहीं, ऋषि बाबा कह रहे मैं तो गर्भ में नहीं जाता, श्री कृष्ण तो गर्भ में जाता है, वो तो कह ही नहीं सकता कि काम महाशत्रु है।
गर्भ में कैसे जाएगा जो वहां से परम धाम से आएगा,
कौन
जन्म तो होंगे,
अब जन्म गर्भ से ही तो लेगा,
नहीं नहीं जन्म कैसे लेगा, इस गर्भ
से ले तो लिया, अब जन्म गर्भ से लिया है क्या, हवा से आ गया वो,
नहीं वो तो खत्म हो जाएगा ना,
कैसे खत्म हो जाएगा,
उसका जब वहाँ परम धाम से आएगा तो उसका शरीर एकदम सत्व प्रधान बन जाएगा।
कैसे बन जाएगा सत्व प्रधान, कब के सत्व प्रधान बन जाएगा, नहीं भाई देखिए जन्म लिया 23 साल का हो गया, सत्व प्रधान हो जाएगा वो। बाबा रोजाना कितनी बार समझाते कि नारायण फिर भी उतना पवित्र नहीं जितना पवित्र कृष्ण, जितना बच्चा, क्योंकि नारायण तो बड़ा हो गया ना, तो वो नारायण बड़ा कौन हुआ, कृष्ण बड़ा हुआ। बात को बहुत ध्यान से समझना है, कृष्ण बड़ा हुआ, कृष्ण जब पैदा हुआ जितनी पवित्रता उसके अंदर तब थी, तब थोड़ा होगी जब वो 30-35 साल का होगा। खेल तो यहां से शुरू हो गया, संगम से शुरू हो गया खेल तो, है ना। तो वापिस आएगा, परंतु उस समय बाकी कोई उससे ज्यादा पवित्र नहीं होगा,
100% पवित्र होगा
भाई उस टाइम नहीं होगा। उस टाइम क्यों पवित्र होगा 100%? कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, ना कि नारायण को। फिर
और बाबा ने ये भी बताया कि उसको भगवान भगवती कहते हैं, पहले दिन जो है ना वो जन्म लेता उसको भगवान भगवती का नाम दिया बाबा।
भाई उसी टाइम ना मेरे भाई कृष्ण के लिए ना,
कृष्ण के लिए ही मैं बता रहा हूँ।
तो भाई कृष्ण जो है जन्म लिया तो निर्विकारी जन्म लिया, कृष्ण ने निर्विकारी जन्म लिया।
अभी बताया बाबा निर्विकारी जन्म लिया,
हाँ
गर्भ से तो नहीं लिया,
भाई गर्भ में तो जाएगा। निर्विकारी भी माता पिता विकार में नहीं गए, दोनों ने संकल्प किया। हाँ जी,
फिर बाबा ने ये भी बताया कि वहाँ मतलब कोई विकार नहीं, संकल्प से बच्चे पैदा होते, तो माँ पिता कहाँ से हो गए?
गर्भ में तो जाएंगे ना, ऐसे तो ना संकल्प करेंगे बच्चा बाहर खड़ा होगा।
विकार से तो नहीं हुआ ना जी।
फिर मैं कब कह रहा हूँ विकार से हुआ,
संकल्प से हुआ ना वो
तो। गर्भ में तो गया ना कृष्ण भाई, बिना गर्भ के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। गर्भ महल होता है सत्युग में, यहाँ गर्भ जेल होती है। यहाँ माँ और बच्चे दोनों तकलीफ में होते हैं, और वहाँ माँ और बच्चे कोई तकलीफ नहीं होती।
इनको कहने का मतलब ये है कि मतलब विनाश होगा,
हाँ
जिनको सही सुरक्षित होगा ना,
हाँ
वो सही पहनेंगी ना,
तो आके पहनेगी। तो जन्म तो हुआ ना भाई, कृष्ण का तो जन्म हुआ। नहीं भाई मतलब समझने बात को, मैं समझ रहा हूँ, पर तो आप कह रहे हो विकार गर्भ में नहीं गया, कृष्ण तो गर्भ में गया ना, जन्म तो गर्भ से लिया ना। आत्मा आई थोड़ी देर के लिए, जिसको अभी बाबा ने 2-4 दिन में कहा था कि 1 सेकंड के लिए जाती है और आ जाती है, तो 1 साल 1 सेकंड के बराबर ही जाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए समझना 1 साल भी थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, परंतु बाबा ने बारीकी से समझाया कि वो 1 साल परम धाम रह करके ही आती है। आत्मा आई अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो गई, परंतु ये जाना और आना उसी प्रकार से है जैसे हम रोजाना शरीर को छोड़ते हैं। हम शाम को रात को सोए, हमने शरीर छोड़ दिया, और 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद आके वापस आकर पहनकर खड़े हो गए। ऐसे ही पहनकर खड़े हो जाएंगे। फर्क ये हो जाएगा कि जब हाँ कृष्ण की आत्मा आकर के वापस शरीर को पहनकर खड़ी होगी, सवेरे उठेगी, समझो उसके लिए सवेरा हुआ, नया युग शुरू हो गया। अब सवेरा हुआ उठेगी, उसको ना तो वो मकान दिखाई देगा, ना वो परिवार दिखाई देगा, ना वो लोग दिखाई देंगे, क्योंकि बाकी जो भी थे वो तो सारे के सारे क्या थे, विकारी, वो तो गायब हो गए, क्योंकि वो उस महल में घुस ही नहीं सकते जिन्होंने, अब उठेंगे तो वही महल में वही वही होंगे, ठीक है क्या नहीं। तो वो उठेंगे तो उनको ना तो वो दुनिया दिखाई देगी, ना वो लोग दिखाई देंगे। जब बाहर आके मिलेंगे तो सब अलग 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 होंगे, कोई एक दूसरे को पहचानता ही नहीं कि तू कौन और मैं कौन। जिसके लिए फिर कौन सा गीत गाया हमने दुनिया वाला, आंख ना जाने दिल पहचान, और उससे वो एक दूसरे से मिलेंगे। हम दुनिया में भी मिलते हैं, अजनबियों से मिलते हैं, हमारा को हमें पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है, अजनबी है, परंतु उसके बाद हमारी उसके साथ इतनी मित्रता हो जाती है, इतनी मित्रता हो जाती है कोई संबंध है तभी तो ही ना। हम सारे जो बैठे हैं यहाँ पर, हम एक दूसरे को क्या जानते थे? ये बाबा ने मिलाया और बाबा के बहाने से अब हमारे अंदर संबंध बन गया। भाई वो भगवान की बात है, यहाँ भगवान की बात तो नहीं है ना। आपने कहा गर्भ में प्रवेश नहीं करता, हाँ तो करे, तो करेगी, उसका नियम है, वो बात अलग है भाई जी। बात सिर्फ ये ना, आपने कहा कि कृष्ण, आप एक लाइन गलत ले जाते तो आगे मीनिंग गलत हो जाता है ना। आपने कहा कृष्ण तो गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? कृष्ण तो गर्भ में प्रवेश करेगा, परंतु कृष्ण की आत्मा जब परमधाम से आएगी तो अपना शरीर पहनकर खड़ी हो जाएगी। हर एक आत्मा ने, जो भी आत्माएं संसार के अंदर हैं, उन्होंने बिना गर्भ के शरीर नहीं मिलेगा।
ये यही है तो चक्कर में मतलब आ रहा है, परमधाम से आएगी और आत्मा,
समझ गया, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ना। अब तो क्लियर हो गया ना, मतलब आत्माएं सब आएंगी, अपना शरीर गर्भ से ही लेंगी। वो तो सिर्फ शरीर को थोड़ी देर के लिए छोड़ा, वो छोड़ना बताया आपको कि जैसे आप रात को सोए, आपने शरीर छोड़ दिया, चार पांच घंटे बाद आकर पहन लिया, उसने एक साल बाद आकर पहन लिया, बस और कुछ नहीं। उनका छोड़ना नहीं है, छोड़ना उनका परम धाम जाना, हम क्या इस चार पांच घंटे में परम धाम नहीं जा सकते? परम धाम जाने में कितना टाइम लगता है? एक सेकेंड, गए और आ गए, ठीक है कि नहीं? तो मतलब कहने का है कि ये समझना है हमें, तो क्लियर हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि मैं तो गर्भ में नहीं आता हूं, परमात्मा तो कभी गर्भ में नहीं आता, वो तो आता ही पर काया प्रवेश करता है। जिसके तन की उसको जरूरत है, जहां उसने अपना काम करना है, उसके तन का आधार लिया और अपना काम किया। छुट्टी क्या जरूरत है मकान बनाने की? अपना किरे गजाओ और जिसका शरीर मिल जाए उसके शरीर से अपना पाठ बजाओ और आ जाओ। उसने अपना पाठ अपना है अच्छा अच्छा लिखा है, हमें अक्कल नहीं दी, हम भी शरीर में ना जाने का पाठ बजाते बाबा की तरह। अब बता रहा है तो हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूं, मुझे रस तो जरूर चाहिए, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं, बहुत जन्मों के 84वें जन्म में या 83वें जन्म में, कुछ भी कहो, लास्ट जन्म होता है जिसमें प्रवेश करता हूं और मैं इसे एक अलौकिक जन्म देता हूं। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण, इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, कृष्ण का जन्म नंबर एक। कब होता है कृष्ण का जन्म? संगम पर, ये नहीं। और उसके बाद 83 जन्म आगे लेने से, 8, 12, 21, 42। तो अब उसको, यदि इसको पहला कहेंगे, कृष्ण के जन्म को पहला कहेंगे, तो ब्रह्मा वाला जन्म क्या हो गया, दादा लेखराज वाला जन्म क्या हो गया? 84वां। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है ना, कि ब्राह्मण जन्म 84वां जन्म नहीं है। हम आज तक समझते थे हमारा ये ब्राह्मण बनना 84वां जन्म है, परंतु आज की मुरली के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि 84वां जन्म तो उनको होगा जो संगम पर जन्म लेंगे, संगम पर जन्म लेंगे। श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं उनके ही 84 जन्म हैं, बाकियों के तो 83 जन्म, बाकियों के तो 83 जन्म, समझ गया। हमने जन्म नहीं लिया ना, अब हमारा शरीर छूटे, हम जन्म ले लेवे, तो हमारा 84वां जन्म होगा, नहीं तो नहीं। संगम पर श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माओं का ही 84 जन्म है। हम तो पहले पहले किसने सुना मेरे भाई, सीधी सी बात है, कान किधर से पकड़ लो, ठीक है ना, बात तो वही आएगी। तो मैं इसमें ही आता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया वे अपने जन्मों को नहीं जानता, वे अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है, श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी, विष्णुपुरी कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहां भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफी है, ये रिकॉर्ड काफी है। क्यों? क्योंकि ये तो भारतवासी खुद गाते हैं, ये तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाता है तब तो फिर से गीता का ज्ञान सुनाऊं, वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म को के कोई मनुष्य है ही नहीं, उस धर्म के अब कोई मनुष्य है ही नहीं। तो फिर गीता का ज्ञान कहां से निकला? बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि नहीं होते, शास्त्र आदि नहीं होते, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता, इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता। इनको पढ़ के मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूं। वाया गति, वाया गति, सदगति माना जीवन मुक्ति और मुक्ति, ठीक है। मुक्ति में पहले जाना है, परम धाम में पहले जाएंगे फिर मिलेगी सदगति जीवन मुक्ति। सबको वापस जाना पड़ता है, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, फिर स्वर्ग में आना है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। पाप कहते हैं एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में जीवन मुक्ति दुख रहित, जीवन मुक्ति का मतलब है दुख रहित, जीवन बंधन मतलब दुख। आज क्या है हमारा? जीवन बंधन है, हम दुखी हैं। और वहां क्या होगा हमारा? जीवन मुक्ति, वहां हमारे पास क्या होगा? सुख, दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना ना सके, सन्यासी तो किसी को भी जीवन मुक्त बना नहीं सकते, वे तो जीवन मुक्ति को जानते ही नहीं, वे तो जीवन मुक्ति को जानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं, सतयुग में होता ही नहीं। सन्यास धर्म तो बाद में होता है, सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी बौद्धी आदि ये सब सतयुग में नहीं आएंगे, ये सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, सब धर्म है, बाकी देवता धर्म है नहीं, देवता धर्म है नहीं, वे सब और धर्मों में चले गए हैं। अपने धर्म का पता ही नहीं, अपने धर्म का पता नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की खय कभी होती है, खय माना हार, भारत की जय कहते हैं, भारत की हार कभी होती है, ये कोई जानते हैं, ये थोड़े कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है, भारत की जय तब होती है, कब, जब राज्य भाग्य मिलता है। इस समय है परमपिता परमात्मा आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं। जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, क्षय करता है, इसको क्षय को ना क्षय लिखना चाहिए, क्षय खर्च करता है, ठीक है न, रावण जाए करते हैं राम, क्षय करता है रावण और जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं, जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे हैं, गीता के अक्षर क्या हैं, अच्छे हैं। ऊंचते ऊंच है भगवान, कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं, मेरा कोई माता पिता नहीं, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, आया ना गर्भ में, मैं तो क्रिएटर हूं। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं, सब शास्त्र आदि बने हुए हैं, ये गीता भागवत आदि सब धर्म पर ही बनाए हैं, गीता भागवत आदि सब किस पर बनाए हैं, देवता धर्म पर ही बनाए हैं। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है, बाप ने क्या किया है, देवी देवता धर्म की स्थापना की है। ये पास्ट हो गया, ये क्या हो गया है, पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा, फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं, आदि मध्य अंत को क्या कहेंगे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है, जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है, ये क्या कहा, मतलब दुनिया वालों में कहा जाता है आदि मध्य अंत पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है ना। अब बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, जो पास्ट हो गया वो फिर प्रेजेंट होता है, पास्ट वापिस प्रेजेंट में कैसे आएगा, क्योंकि हू बहु रिपीट होना है, हू बहु रिपीट होना है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वे फिर क्या होगी, फ्यूचर में रिपीट होगी, फ्यूचर में क्या होगी, रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, परंतु जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में पूरे वर्ल्ड के अंदर ये क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराया जाता है, परंतु इतिहास कैसे दोहराया जाता है ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगा, फिर फ्यूचर में क्या होगा, रिपीट होगा। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहां भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है, बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, हे गॉड फादर आओ। लेकिन वे है कौन, वे है कौन। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हैवन था, भारत क्या था, शिवालय हैवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वे किसने स्थापन किया, वे किसने स्थापन किया। जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने, जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने, ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परम आत्मा शिवाय नमः हुआ, ऊंचते ऊंच परम पिता परम आत्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे, शिव कब पधारे ये नहीं जानते, ये किसी को पता नहीं है। जरूर हैवन से पहले संगम पर आया होगा, हैवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे आता, अब यहां भी लिखने में फिर वही गलती किया है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, इन्होंने युगे युगे कर दिया। हर एक युग में नहीं, हर एक युग में सिर्फ संगम युग पर ही आता हूं, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग कहो तो भी मेरे चार अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं, ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हैवन रचते हैं, जो ही हैवन रचते हैं। भारत ही हैवन था, वॉइसलेस था, फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वे तो रसम रिवाज होगी, वही चलेगी। तुम क्यों फिक्र करते हो, पहले तुम बाप को तो जानो, पहले तुम बाप को तो जानो। वहां आत्मा का ज्ञान रहता है, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। रोने की बात नहीं, अभी कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूं, मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वे तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतान हैं। वे निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है, पुनर्जन्म में जरूर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ तो जरूर सब चक्र में आएंगे, जरूर सब चक्र में आएंगे। बाबा आकर पुनः गीता ज्ञान सुनाए तो सारे दोबारा आएंगे ना, जो होकर गए हैं बाप भी होकर गए हैं फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनो, फिर से आकर गीता सुनो। बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर, पतित दुनिया है सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ये भारत ही था, स्वर्ग में ये भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वे बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहां जा ना सके। बाप तो बैठे समझाते हैं, मैं कैसे रूप रचता हूं, मैं कैसे रूप रचता हूं। सारा मदार धारणा पर है, सारा मदार किस पर है, धारणा पर है। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है, जितनी तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती, सबकी मुरली भल काठ की मुरली सब बजाएं, बांसुरी ले लो सारे बजाओ, परंतु सबकी एक जैसी नहीं बज सकती। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग अलग है, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। जब धर्म ग्लानी होती है तब मैं आता हूं, भक्ति मार्ग में भी मैं, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं, ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वे है हद का इंश्योरेंस। इनडायरेक्ट दुनिया में जो भी इंश्योरेंस होते हैं वो हद के इंश्योरेंस हैं, और वो इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नहीं है। और ये है बेहद का इंश्योरेंस, और वो भी डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, अपना तन अपना मन और धन से अपने को इंश्योर करते हो। तन मन धन से कैसे इंश्योर करते हैं? इन तन मन धन को ईश्वरीय डायरेक्शन पर प्रयोग करने से आप क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बनते हैं। फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो, मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा, ना ईश्वर लेता और ना वो देता। आपने दिया पंडितों को, आपने दिया मनुष्य को, तो वो आपको देगा, है ना? दूसरा क्यों देगा? समझते हैं ईश्वर देगा, वो कैसे दिलाते हैं ये थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है, ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर, फिर रोते क्यों हो? तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा, ये शरीर भी खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वे करो। फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएगा जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योरेंस इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो। भाई तन मन धन को बाबा की श्रीमत पर यूज ना करो, यहाँ ही खाते रहो। आप आओ, हाँ जी मेरे पास जी ये 20 लाख रुपया है, मैं समर्पित यज्ञ के अंदर 20 लाख दे दिया, आप खाते रहो सेवा करो, नहीं भाग्य तो ना बनेगा। वो तुमने यहाँ खा लिया, फिर सेवा क्या, फिर भाग्य क्या मिलेगा? तुम्हारा खर्चा भी चलता है ना, इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तो उच्च पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा, सर्विस फिर थोड़ी करोगे तो मिलेगा भी थोड़ा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं, अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। वे है जिस्मानी, वे है जिस्मानी। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, हर एक को तुम यात्री बनाते हो। ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, माँ मेकम याद करो। परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये ओल्ड हो गया है, अब ये क्या हो गया है, ओल्ड पुराना हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं, अभी वापस घर जाना है। अनेक बार ये पार्ट बजाया है, 84 जन्मों का ये नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है उनके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वे आ जाएंगे, जो क्या होंगे, फूल होंगे वे आ जाएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते, माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो बरोबर, इनके गुरु गोसाई आदि भी थे। बाप कहते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा के अपने भी गुरु गोसाई थे। बाप कहती है गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है, एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, राजा रानी तो क्या हो गया, प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वॉइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था। अब संपूर्ण विशेष है, वहां रावण का राज्य होता नहीं, रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है। इस समय सब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत है, हर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे, उनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है, मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठना है, और नशा चढ़ता है। ये कस्तूरी नॉलेज है। कस्तूरी नॉलेज का क्या मतलब होता है, मृग में कस्तूरी होती है और उसे खुशबू आती है और वो उसके पीछे ढूंढता फिरता है कहाँ से आ रही है ये खुशबू। उसे पता नहीं कि ये मेरी नाभि से ही खुशबू आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है, अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है, बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है, स्वयं में धारणा करनी है फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव, सहज सफलता मूर्त भाव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो, अपने को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी, वाणी की एनर्जी जमा होगी। और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी, सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत खिदमतगार हैं, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।